श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की टीका इस संबंध में बड़ी सुंदर है, हम उसकी चर्चा करते हैं, फिर श्रील प्रभुपाद जी की सुंदर तात्पर्य को भी हम लोग देखेंगे। वो कहते हैं कि जीव का गुणों से या प्रकृति से वैभिन्न, यानी कि किस प्रकार से जीव गुणों से या प्रकृति से अलग है यह समझ करके, इसकी अनुभूति करके और गुणों को पार करके आपके चरणों में एकांतिक भक्ति के द्वारा और अपने स्वरूप को प्राप्त करके, जिसके द्वारा वह आत्मा के 8 गुणों को प्राप्त कर चुका हो और पूरी तरह मुक्त होकर के, किस प्रकार से व्यक्ति को ब्रह्म में स्थित रहना चाहिए। क्या प्रश्न है? शुद्ध भक्ति के द्वारा गुणों को पार करके, गुणों से अपनी वैभिन्न को अनुभव करके, पूरी तरह मुक्त होकर के, किस प्रकार से व्यक्ति को ब्रह्म में स्थित होना चाहिए, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे एक शब्द है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ही शब्द दिखा रहा है कि निश्चित रूप से इसी प्रकार से होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? जो जीव अपने को ब्रह्म के रूप में प्रकट कर रहा है, यानी कि ब्रह्म के जीव, शुद्ध जीव के 8 गुणों को प्रकट कर रहा है, गुणों के आवरण को से अनावृत होकर, गुणों के आवरण के कारण, रजगुण तमगुण सतगुण के आवरण के कारण जीव अपने स्वरूप को और आत्मा के स्वरूप भूत गुणों को प्रकाशित नहीं कर पाता, जैसे भूख न लगना, मरना नहीं, सत्य संकल्प होना इत्यादि जो हमने पिछले श्लोकों में चर्चा किया था। और जब वो मुक्त हो जाता है तो उन गुणों को प्रकाशित करता है। तो वो कह रहे हैं भगवान कि जब जीव इस प्रकार से अपने ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर जाता है और अव्ययस्य अर्थात अब वह परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो हमेशा मुक्तावस्था में रहता है और भगवान के प्रति अपने प्रेम को परिवर्तित नहीं करता, अर्थात भगवान के प्रति उसका जो प्रेम है उसमें कमी नहीं आती, यानी वो नित्य मुक्त अवस्था में रहता है और भगवत प्रीति में लगातार स्थित रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान अकेले ही, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, भगवान ही प्रतिष्ठा है। किस चीज के, क्यों प्रतिष्ठा है? क्योंकि भगवान सभी गुणों से, अच्छे गुणों से युक्त हैं, निंदनीय कार्यों के परे हैं, सारे लोगों के, सभी जीवों के सबसे सुहृद हैं, प्रेमी भक्त हैं, प्रेमी मित्र हैं और सभी के स्वामी हैं। तो ऐसे भगवान के प्रति जो उसकी प्रेम है वो बहुत प्रगाढ़ हो जाता है और वो भगवान उस व्यक्ति को बहुत प्रिय हो जाते हैं। प्रतिष्ठा का शब्द यहाँ पे वो इस प्रकार से अर्थ लेते हैं। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है जिसमें कोई व्यक्ति रहे या जो परम आश्रय हो। तो यानी कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की भक्ति करके मुक्त हो गया है उसके लिए भगवान ही परम आश्रय हैं। किस रूप में? सब सर्वश्रेष्ठ प्रेमास्पद के रूप में, जिनसे सबसे अधिक प्रेम किया जाए उस व्यक्ति के रूप में भगवान उसके आश्रय, अर्थात भगवान उस शुद्ध भक्त के, जो भक्ति के मार्ग के द्वारा, भक्ति के साधन के द्वारा शुद्ध हो गया है, उसके प्रेम के सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं। इस कारण से वह व्यक्ति सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रेम के साथ लगातार भगवान श्री कृष्ण का अनुभव करता है जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, यानी भगवान के गुणों का अनुभव करता है अपने दिव्य प्रेम के द्वारा लगातार। ये प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है। और किसी भी समय वो भगवान से दूर नहीं होता, जैसा कि भगवान ने भगवद्गीता के अन्य अध्याय में बताया है, युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति न च मे, श्लोक भूल रहा हूं, कि जो व्यक्ति हर समय भगवान को हर जगह देखता है वह भगवान, वो कभी भी भगवान से दूर नहीं होता और भगवान उससे कभी दूर नहीं होते। यानी प्रेमी भक्त प्रेम की इसी प्रेमावस्था को वर्णन करता है। श्रुतियां कहती हैं न च पुनर आवर्तते, यानी कि वह व्यक्ति दोबारा कहीं जन्म नहीं लेता, ये छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है। स्मृतियां यह भी कहती हैं यद गत्वान अनिवर्तन्ते, भगवत गीता में बोलते हैं भगवान के धाम जाने के बाद व्यक्ति दोबारा कभी नहीं आता। मुक्तानाम परमागति ही, भगवान ही मुक्त पुरुषों के सर्वोच्च आश्रय है, ये महाभारत का श्लोक है। अब एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति मुक्त हो गया है तो उसे भगवान का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि प्रायः श्रुतियां कहती हैं जो मुक्ति है यही परम या सबसे आखिरी का फल है, परम फल यही है, परम पुरुषार्थ यही है कि व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर ले। तो मोक्ष प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भगवान को आश्रय क्यों लेगा, भगवान का आश्रय लेने की क्या जरूरत है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं क्योंकि भगवान के शरणागत होने से व्यक्ति को इतना अधिक लाभ मिलता है। भगवान ही शाश्वत गुण जो हैं, भगवान के जो षड ऐश्वर्य हैं वो उसको इंगित कर रहे हैं धर्मस्य। धर्मस्य भगवान का जो धर्म है, जो गुण है, धर्म का एक अर्थ होता है किसी भी वस्तु का वो गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो उस अर्थ में षड ऐश्वर्य जो भगवान के हैं, अर्थात सबसे सुंदर, सबसे यशस्वी, सबसे विरक्त, सबसे शक्तिशाली इत्यादि, वो भगवान में सब भगवान में ही केवल प्रतिष्ठित रहते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मतलब शाश्वत रूप से ये जो षड ऐश्वर्य हैं पूर्ण रूप से केवल भगवान में ही शरण ली हुए, भगवान के पास ही सारे ये ऐश्वर्य होते हैं। और भगवान ही सारे रसों के, यानी कि साख्य दास इत्यादि के वो एकमात्र आश्रय हैं, और वो है एकांतिकस्य सुखस्य, रस के द्वारा, रस का अर्थ ही होता है सुख। तो इसलिए भगवान ही सारे जो पांच प्रकार के संबंध होते हैं, जिसमें रसों में संबंध होता है, दास साख्य वात्सल्य इत्यादि माधुर्य, उसके आश्रय भी भगवान हैं। और जिस और वह रस जो है वो भगवान की विभिन्न लीलाओं से उत्पन्न होता है। तो ये भक्त मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने के बाद भी भगवान की शरण इसलिए लेता है क्योंकि वे भगवान के अत्यंत सुखमय रूप का अनुभव करता है और भगवान की दिव्य चमत्कारी गुणों का अनुभव करता है और भगवान की लीलाओं का अनुभव करता है। तो यानी कि मुक्ति के बाद भी वह कृष्ण का शरण इसलिए लेता है क्योंकि कृष्ण इतने आकर्षक हैं, जिसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपिरुक्रमे कुर्वन्त है तो किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। जो इस प्रकार से आत्मा रामी पुरुष हैं, ब्रह्मभूत पुरुष हैं, जिन्हें कोई आकांक्षा नहीं है, वह भी कृष्ण का सेवा करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि कृष्ण के गुण ही इस प्रकार से हैं। तो यानी कि कृष्ण के गुणों का अनुभव एक मुक्त पुरुष ही कर सकता है और इसी कारण से मुक्त पुरुष जो भगवान की भक्ति के द्वारा मुक्त हुए हैं भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। इस संबंध में श्रुतियां कहती हैं रसो वयसः रसम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवति, भगवान ही रस हैं और उनको प्राप्त करके जो कि मूर्तिमान रस हैं व्यक्ति सुखी हो जाता है। तैतरीय उपनिषद का श्लोक है। तो यानी कि व्यक्ति इस संसार में रहता है गुणों के संग करने से या गुणों के मिश्रण का संग करने से, और जब वो गुणों को लांग जाता है तो वह मुक्त हो जाता है, और यह केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा होता है। इसी को हमें चौथे अध्याय में सीखना है, हमने सीखा है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम देखते हैं, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर आते हैं। मैं समझता हूं आप सभी लोग इस बात को समझते हैं, जैसे सूर्यदेव से जिसकी भेंट होती है तो वह सूर्य के गोले के बारे में भी जानता है और सूर्य की रोशनी के बारे में भी जानता है। तो सूर्य की रोशनी है ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार है सूर्य के गोले का साक्षात्कार, और सूर्यदेव से जाके पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना, उनसे मित्रता करना है वो भक्ति का साक्षात्कार या भक्ति के द्वारा भगवान का साक्षात्कार। सातवें, यानी कि जो व्यक्ति सूर्यदेव से मिल रहा है उसको अन्य साक्षात्कार है, उसी प्रकार से जो भगवान का साक्षात्कार करता है उसको ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात्कार अपने आप हो जाता है। सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है, अर्थात भौतिक शक्ति है जो कि चेतना से रहित है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए आध्यात्मिक स्पर्श है। आप इसका अर्थ समझते हैं कि जीवात्माओं को भगवान भौतिक प्रकृति में स्थापित करते हैं और व्यवस्था करते हैं कि उनके कर्म और इच्छाओं के कारण उनको विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त हों। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। यानी कि प्रकृति में रहते हुए भी, अपने शरीर में और अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहते हुए भी, जब जीव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, और हम सब लोग इसी अवस्था में हैं, अपने जड़ शरीर से, मन से, इंद्रियों से हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भगवान का ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति धीरे धीरे क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है, समझ पाता है कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है, यानी पहले व्यक्ति समझे कि वह शरीर नहीं है, आत्मा है, ये बात तो समझनी होती है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात आत्मज्ञान तो उस व्यक्ति को हो जाता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता है कि भगवान का साक्षात्कार क्या है या परमात्मा का साक्षात्कार क्या है। जैसे कोई व्यक्ति सूर्य की ज्योति में आ जाए, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह सूर्य के गोले को देख पा रहा है या सूर्य की सूर्य ग्रह में उसने प्रवेश कर लिया है, तो ये इस बात हमें समझ लेनी चाहिए। ब्रह्म साक्षात्कार ये पहला लेवल है आध्यात्मिक साक्षात्कार का। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि उसे अभी भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जिसके द्वारा भगवान का साक्षात्कार होता है। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। मतलब अब उसके बाद वो और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा तो फिर वो प्राप्त हो सकता है। ध्यान देना चाहिए, ज्ञान योग के द्वारा व्यक्ति ब्रह्मबोध को प्राप्त कर सकता है, अर्थात आत्मबोध प्राप्त कर सकता है, उसको ये साक्षात्कार हो सकता है कि वो आत्मा है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार तभी होगा कि तब जब वो समझ ले कि वह आत्मा है, उसके बाद वो भगवान की सेवा करना शुरू करे। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे लेकिन क्रमशः वह भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता उसके नीचे घिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। ये नैर्विंदाक्ष विमुक्त मानिना तो यष्ट भावाद अविशुद्ध बुद्धे आरोह्य कृच्छे न परम पदम तथा पतंति नादृत युष्मात् पदांग्रया। कि व्यक्ति बहुत तपस्या करके उच्च पद को प्राप्त करे, परम पद को प्राप्त करे, भगवान का साक्षात्कार ना कर किया हो लेकिन उसे ब्रह्म पद प्राप्त किया है, लेकिन भगवान के चरण कमलों का अगर अनादर करता है तो फिर वो नीचे गिर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक जीव को कृष्ण की सेवा का सुख नहीं मिलेगा उसके लिए वो कह सकते हैं स्टेबल सिचुएशन नहीं है, स्थायी स्थान नहीं है। जैसे कोई हम लोग देखते हैं ये सैटेलाइट इत्यादि को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो कुछ समय के लिए वो टंगी रहती हैं, उसके बाद वो नीचे गिरने लगती हैं, लेकिन जो किसी ग्रह पे स्थित होता है तो वहाँ पे उसका स्थान रहता है, स्थायित्व रहता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करता है भले ही काफी समय के बाद गिरे लेकिन उसे गिरना पड़ता है जगत में, अगर वो भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा को ना प्राप्त करे और भगवान का बोध प्राप्त ना करे, भगवान के द्वारा मिलने वाले सुख जो विभिन्न रसों में प्राप्त किए जाते हैं भक्त के द्वारा, उसको प्राप्त ना करे। और इसका कारण है उसकी बुद्धि पूरी तरह से ठीक नहीं है क्योंकि उसने भगवान के भक्तों का संग नहीं किया। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में भी यह भी कहा गया है, रसो वै सह रसम ही एवायम लब्धवानंदी भवती रस के आकार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले टीका से कोट किया था, वही बात है कि भगवान ही रस, एकमात्र कृष्ण ही सारे रसों के आकार हैं, और कृष्ण से रस का आदान प्रदान जब प्राप्त करता है तो जीव हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध हो जाता है। परमेश्वर छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन छह ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। ये चीज अभी देखिए प्रभुपाद जी टीका से समझा रहे हैं, शाश्वतस्य धर्मस्य, भगवान छह ऐश्वर्यों से शाश्वत रूप से परिपूर्ण है और जब भक्त उनके निकट पहुंचता है तो भक्ति के कारण उनके दिव्य गुणों का, उनके रूप का, लीला इत्यादि का अनुभव करता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। मतलब एक बार भगवान का सुख प्राप्त होने लग गया भक्ति का, तो कभी भी वो नष्ट नहीं होने वाला, काल के द्वारा वो प्रभावित नहीं होता। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरत्व सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं, यानी कि शुरुआत से ही, जैसे आपने आपको याद हो, शुरुआत से ही व्यक्ति भक्ति में गुणों के संपर्क में नहीं रहता, गुणों से वो अलग चलता है और जब परिपक्व हो जाता है तो भगवान के प्रेम में वह भगवान का अनुभव कर पाता है, दिव्य गुणों का, दिव्य रूप का, नाम लीला इत्यादि का। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिस कारण से वह नीचे गिरता है, अर्थात भौतिक जगत को भोगने की इच्छा के कारण हम नीचे पतित होते हैं। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है, और ये संसर्ग कब हुआ? अनादिकाल से, इसकी शुरुआत हम नहीं ढूंढ सकते। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, अर्थात भगवान अच्छे हैं और जीव भी अच्छा है अपनी मूल स्थिति में, लेकिन गुणों का संग करने के कारण उसमें दोष आ जाते हैं। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। पूर्ण भक्ति का अर्थ है काया से, मन से, वचन से कृष्ण की सेवा करना और भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए कृष्ण का भजन न करना और उसमें ज्ञान और कर्म का आवरण नहीं होने देना। ये आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूं अब तक, शुद्ध भक्ति का अभ्यास करना, और इस प्रकार से भोग की वासना अपने आप दूर हो जाती है। अतएव भक्त की संगति करके भक्ति की नौ विधियों, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य को प्रभुता जताने वाली, मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। तो आप समझ गए होंगे, कभी भी कोई बोले कि भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्सर को कैसे जीतना है? गुरु की सेवा करके, कृष्ण की सेवा करके, और कृष्ण की सेवा इस नवधा भक्ति के द्वारा करके व्यक्ति धीरे धीरे भोग की वासनाओं से मुक्त हो जाएगा और भगवान की प्रेम भक्ति में स्थित हो जाएगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतएव सरल, अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरणों कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को की सुगंध को सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की द्विव ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरुधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। अर्थात भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है जो भगवान की अवस्था है। भगवान बन नहीं जाता है लेकिन भगवान की तरह वह गुणों से छूट जाता है और भगवान की सेवा करने के लिए वह योग्य बन जाता है। तो यानी हमने यही सीखा इस अध्याय में कि गुणों का संग करने से हम बद्ध होते हैं और हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, और अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम लोग क्रमशः गुणों से मुक्त होते होते भगवान की शुद्ध भक्ति में स्थित होकर के भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाते हैं, और ये केवल भक्ति के द्वारा ही होता है, और भक्ति करेंगे तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा।